జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద శ్రీ చైతన్య చరితామృత సే పాఠ్ మధ్య లీలా కి 11వ అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 28 సే 31 తక్ బోర్డ్ మే 31 లిఖా హై ఉస్కో అగ్రతి కరేంగే ఔర్ వైట్ కర్ లేంగే ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణురారాధనం పరం తస్మాత్ పరతరం దేవీ తదీయానాం సమార్చనం ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణురారాధనా పరం తస్మాత్ పరతరం దేవీ తదీయానాం సమార్చనం ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణురారాధనం పరం తస్మాత్ పరతరం దేవీ తదీయానాం సమార్చనం.
శబ్దార్థ
ఆరాధనానాం పూజా సర్వేషాం సబ్కి విష్ణు భగవాన్ విష్ణుకి ఆరాధనం పూజా పరం సర్వోచ్చ తస్మాత్ ఔర్ విష్ణుకి భీ పూజా సే పరతరం అధిక శ్రేష్ఠ దేవీ హే దేవీ తదీయానాం భగవాన్ విష్ణు సే సంబంధిత వ్యక్తియో కి సమార్చనం పూజా. అనువాద ఏవం తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద జీ కే ద్వారా అనువాద. శివ జీ నే దుర్గా దేవి సే కహా హే దేవి, యద్యపి वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है, किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तात्पर्य, वेदों के तीन विभाग है, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। इनसे संबंधित कार्य होते हैं सकाम कर्म, अनुभवजन्य तर्क वितर्क तथा पूजा। वेदों में विभिन्न देवताओं तथा भगवान विष्णु की पूजा के लिए संस्तुतियां। पद्म पुराण के इस श्लोक के द्वारा शिव जी दुर्गा देवी के प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृत में भी सम्मिलित है। विष्णुर आराधनम शब्द भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा का द्योतक है। इस तरह पूजा का सर्वोपरि रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि है। यह भी निष्कर्ष निकला गया है कि भगवान कृष्ण के भक्त की पूजा करके भगवान विष्णु की अधिक अच्छी सेवा की जा सकती है। भक्त कई प्रकार के होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस में भी अवस्थित भक्त। यद्यपि सारे रस दिव्य पद पर है, किंतु माधुर्य रस सर्वोपरि दिव्य रस है। इस तरह निष्कर्ष यह निकला कि माधुर्य रस में भगवान की भक्ति करने वालों भक्तों की पूजा भक्ति करने वाले भक्तों की पूजा सर्वोच्च आध्यात्मिक कृत्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायी मुख्यतः माधुर्य रस में ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। अन्य वैष्णव आचार्य वात्सल्य रस तक की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति विदग्ध माधव में श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को सर्वोच्च मानते हैं। अनर्पिता चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कड़ौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में माधुर्य रस की सर्वोत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए प्रकट हुए। जो ऐसा उपहार था जैसे कोई भी आचार्य या अवतार इसके पूर्व भेंट नहीं कर सका था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को परम वदान्य अवतार माना जाता है। उन्होंने ही माधुर्य रस में कृष्ण प्रेम की उत्कृष्टता दिखलाते हुए कृष्ण प्रेम का वितरण किया। श्लोक 28 और 29 का अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्लोक 28 में कहा गया है, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्तानां चै भक्तास्ते मे भक्त तमामतः। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु यह श्लोक आदि पुराण से उद्धृत करते हैं। यह श्लोक भी लघु भागवतामृत में है। श्लोक 29 और 30, इसमें बताया गया, आदरः परिचर्यायां सर्वांगेरभिवंदनम् मद्भक्त पूजाभ्याधिकः सर्व भूतेषु मन्मतिः मदर्थ संगचेष्टा च वचसा मद्गुणैरणं मयर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम्। मेरे भक्त बड़ी सतर्कता तथा आदर से मेरी सेवा करते हैं। वे अपने सारे अंगों से मुझे नमस्कार करते हैं। वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा भी करते हैं और सारे जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं। वे मेरे लिए अपने शरीर की सारी शक्ति लगा देते हैं। वे मेरे गुणों तथा रूप की महिमा का बखान करते हैं। बखान करने में अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। वे अपना मन भी मुझे अर्पित कर देते हैं और सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की चेष्टा करते हैं। मेरे भक्तों के यही लक्षण है। ये दोनों श्लोक भी लघु भागवतामृत में है। और उसके बाद ये आराधनानं सर्वेषां। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम्। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अहम श्री गुरु श्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानितंश नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज के आप के नियम के अनुसार सप्ताह में एक बार जो श्री चैतन्य चरितामृत पाठ ये चल रहा है और ये प्रसंग जो है ये अध्याय का, इसमें अभी तक आपने सुन चुके होंगे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत टूर में गए थे, वहां से वापस आ गए। वापस आए, उनके ग्रैंड वेलकमिंग सेरेमनी हुआ, सब कुछ हुआ और पुरी में आने के बाद श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको राजा प्रताप रुद्र का अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस किया उनके साथ। और राजा प्रताप रुद्र मिलना चाहते थे महाप्रभु से, महाप्रभु रोक टोक मना कर दी, बोले व्हाट आर यू सेइंग, मना किए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जितने उनका प्रयास करना था किए, राजा ने पूरी आ चुका था और सार्वभौम को बुलाया, सार्वभौम हेड पंडित थे, उनसे जाकर मिले, मिल करके बताए कि ऐसे ऐसे बात है। तो राजा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मनोभाव प्रकट किया, बोला अगर महाप्रभु मुझे नहीं मिलना चाहते हैं तो मेरे जीवन से क्या मूल्य है, मुझे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, मैं राजा हूं इसलिए ना, हाँ यही, बाकी सब ठीक ठाक हो, केवल तो राजा का स्टाम्प लगाए गड़बड़, बोले मैं राजपाट छोड़ दूंगा, मैं जोगी भिखारी हो जाऊंगा, भगवत महाप्रभु के दर्शन करने के लिए मुझे ये जरूरत नहीं है पोस्ट पोजिशन, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और इतने मैसेज भेजा तो सार्वभौम पंडित बोले नहीं 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 ऐसा मत करो, बात करूंगा करूंगा। तो इतने अवसर में महाप्रभु तो राजी नहीं हो रहे थे, बोले नहीं आप मुझे बाध्य मत करो ये सब काम करने के लिए। इतने अवसर में राजा भी दुखी था, बोला क्या करूं, मुझे मिलना नहीं चाहते सार्वभौम, और बाकी भक्त लोग भी प्रयास करके देख लिए। इतने अवसर में महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आते समय रामानंद राय से फिर मिले थे और उनको बोले थे कि आप आ जाओ ना, हम दोनों मिलकर के रहेंगे पुरी में। तो रामानंद राय बीआरएस अप्लाई किया था राजा के पास, बीआरएस समझते ना, नहीं समझते आप लोग सब, हाँ जानबूझ करके नौकरी से रिजाइन देना, ओ वॉलंटियर रेजिग्नेशन अप्लाई किया। तो राजा कौज पूछा किस कारण से आप अभी इतने बड़े पोस्ट से किस कारण से वॉलंटियर छोड़ना चाहते, ना मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहने के लिए बोले हैं, अब मैं भी चाहता हूँ वो भी चाहते हैं, मेरा भी इच्छा नहीं, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना प्रताप रुद्र महाराज कि उन्हीं के पास जाने के लिए वो इतने बड़े गवर्नरशिप पोस्ट छोड़ना चाहता है, तो इमीडिएट राजा ने आग्री कर लिया, बोले यस 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 आप श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते हैं आप जाओ, और ऐसा नहीं कि तू नौकरी नहीं छोड़ देगा तो पेंशन सैलरी नहीं मिलेगा, जो आपके तनख्वाह पूरा पूरा मिलेगा, फुल फैसिलिटी मिलेगा, फुल सैलरी मिलेगा, जो भी पोस्ट का जो आपका पोजीशन का जो स्टेटस वो भी मेंटेन करेगा और आप जाओ। लेकिन एक बात मैं वो भी हैरान हो गया, मुझे इतने क्यों आप फैसिलिटी देते, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मेरे पोजीशन भी रहेगा, सैलरी भी मिलेगा और मैं काम भी नहीं करूंगा ना, बोला किस लिए ना, क्योंकि आप इस काम से बहुत बड़े काम करने जा रहे हैं जिनके लिए मैं राज्य त्याग करना चाह रहा था और आपको बुला रहे हैं, मैं तो उनको दर्शन लेने के लिए राजा पोस्ट छोड़ना चाह रहा था, तू तो एक राज्यपाल है, गवर्नर है, मेरे अंडर में कई गवर्नर है, उसमें एक मैं तो स्वयं अपने आपको छोड़कर भिखारी बनना चाह रहा था, वो मुझसे ये भाग्य नहीं मिला और आपको बुला रहे हैं उनके पास आने के लिए, मुझे तो बुलाना क्या बेटी नहीं हो पाता, तो आप उनके पास जाना चाहते हो इसलिए मैं परम प्रसन्न हूं, आपको रेजिग्नेशन इमीडिएट सैंक्शन और फुल सैलरी फुल स्टार्टर सब कुछ आपको गवर्नमेंट क्वार्टर फटर सब कुछ मिलेगा आप जाओ। राजा का इस प्रकार की भाव श्री चैतन्य महाप्रभु प्रति इतने भक्ति इतनी भाव देखकर प्रताप रुद्र मेल्ट हो गए ना सॉरी प्रताप रुद्र का भाव को देखकर रामानंद राय बोले महाराज प्रताप रुद्र इतने मानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। उनको तो हिस्ट्री पहले का पता नहीं था कि वो आप लाइक मिले तो प्रताप रुद्र महाराज बोले कि रामानंद जी आप जाइए और जरूर जाइए जब जाना चाहिए मैं आपके लिए बुकिंग कर रहा हूँ गाड़ी भड़ी आप जाइए लेकिन एक मेरे बात रिक्वेस्ट है ना क्या अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे मेरे और थोड़ा बताना बस बाध्यत नहीं करेंगे तो स्वतंत्र ईश्वर है थोड़ा बताना मेरे लिए शायद आपका बात मान जाए क्योंकि आपको साथ उनका बड़े मित्रता है थोड़ा प्रयास करना ये रिक्वेस्ट किए थे महाराज प्रताप रुद्र ने अपने स्टाफ रामानंद राय को। तो रामानंद बोले ओके आई विल ट्राई। तो अभी रामानंद राय आ चुके हैं महाप्रभु आने के बाद में थोड़े दिन के बाद वो भी उनके बीआरएस सैंक्शन हो गया तो आ गए उन्होंने आ करके सीधा पुरी पहुंचे श्री जगन्नाथ दर्शन करने नहीं गए। देखिए ये है भक्त के रामानंद राज से अति अति उच्च कोटि के भक्त उन्होंने पुरी पहुंचे वो थे दक्षिण भारत में वहां रहते बड़ा कई दिन से वहां रहते दक्षिण भारत से श्री धाम श्री क्षेत्र पुरी पहुंचे पहुंच करके और ऐसा नहीं कि कोई दूसरी रोड पकड़े श्री मंदिर के सिंह द्वार के सामने ही निकले क्योंकि जहां श्रीमन महाप्रभु रहते थे गंभीरा मठ राधाकांत मठ वो बिल्कुल मंदिर के दक्षिण पार्श्व में मंदिर के सामने ही सिंह द्वार होकर जाना पड़ेगा और सिंह द्वार होकर के गए अंदर नहीं गए जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। इतने दिन के बड़े दिन के बाद आए ठाकुर जी के दर्शन के लिए अंदर नहीं गए सीधा गए श्रीमान महाप्रभु के पास उनके पास जाकर के मिले और मिलन जैसे होना था ऐसे हुआ महाप्रभु दोनों तो इसी स्तर के थे मिले बहुत हुआ बातचीत हुआ बातचीत होते होते रामानंद ने बताया बोला बोले आप इतनी जल्दी सैंक्शन हो गया ना हाँ सैंक्शन केवल हुआ क्या मेरा पोजीशन मेंटेन भी रहा जो मैं साइन कर सकता हूँ सब कर सकता हूँ ऑर्डर भी दे सकता हूँ मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर भी यहाँ भी पूरी मिला और मेरा सैलरी बरकरार रहा जब तक रहूंगा तारे मुझे पेंशन सैलरी प्लस सब कुछ मिलते रहेगा सब कुछ। बोले ऐसे कैसे कैसे हो गया गवर्नमेंट इसी सैंक्शन में राजी हो गया। बोले क्या बताऊं आपके नाम सुनकर गवर्नमेंट का हाल खराब। बोले राजा को मुझे से बताया कज मुझे पूछा किसी लिए नौकरी रेजिग्नेशन करना तो मुझे बताया कि इसी चैतन्य में आपके नाम सुनते ही ये सारे काम बन गया आपका नाम सुनते ही सारे सैंक्शन कर दिया सैलरी सब कुछ कर दिया इतने आपको मानता है राजा क्या बताऊं। महाराज पत्रबुद्ध का इतादृश भक्ति आपके प्रति है इसलिए मुझे इतने सम्मान किया पूरा फैसिलिटी दे करके फुल सैलरी फुल पोजीशन स्टार्टर सब दे करके भेजा। महाप्रभु ऐसा सुन करके रामानंद राय से बोले कि रामानंद आप तो कृष्ण भक्त में प्रधान है आप बड़े उच्च कोटि के कृष्ण भक्त है और जो आपको प्रसन्न करना चाहता है आपको सेवा करना चाहता है कृष्ण उनको कैसे छोड़ सकते हैं। कृष्ण हैज नो ऑप्शन उनको अपनाना पड़ेगा उनको। भगवान बोले चैतन्य महाप्रभु अब प्रताप रुद्र के प्रति उनका मन भाव ठंडा पड़ गया नरम हो गए बदल गए कि उन्होंने मेरे प्रिय भक्त रामानंद को इसे सेवा किया तो मुझे तो मिलना होगा उनसे डिसाइड कर लिया मन से तो फंस गया मैंने। देखिए महाप्रभु भक्तों को कोई सेवा करेगा तो भगवान को फिर तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा उनका नियम फियम सब बेकार हो जाएगा भक्त की सेवा से। अब भगवान ने दब गए अब रामानंद भी समझ गए बोले प्रभु का मन प्रिय हो तो मिलेंगे उनसे। महाप्रभु बोल दिए बोले कृष्ण अवश्य उनको कृपा करेंगे क्योंकि अब कृष्ण के परम भक्त आप है अब आपको कोई सेवा करे तो अवश्य ही उनको कृष्ण कृपा करेंगे उद्धार करेंगे। तो फिर बोले कि आप आए जगन्नाथ दर्शन करके आए ना नहीं मैं कहां गया मंदिर बोले मंदिर के सामने से तो निकले ना, मंदिर के सामने आया लेकिन मंदिर नहीं गया। महाप्रभु बोले क्या आप इतने दिनों के बाद पूरी आए, श्रीक्षेत्र आए, मंदिर के सामने आए और मंदिर दर्शन करने मेरे पास आ गए, ये गलती क्यों किए? रामानंद राय उत्तर देते हैं महाप्रभु को, बोले प्रभु मैं क्या करूं, जो गाड़ी में बैठा था गाड़ी ले आया मुझे, वो स्टॉप रखा नहीं, गाड़ी का स्टॉपेज नहीं हुआ, मंदिर के सामने स्टॉप नहीं था। कौन सा गाड़ी? बोले मेरे जो शरीर रूपी रथ, ये रथ के चरण जो है, रथ चक्का जो है मेरा पैर, वो इधर स्टॉप ही नहीं क्या? बोले हृदय ड्राइवर है रे, वो ये बात कहते हैं। बोले मेरे हृदय जो है, मन और हृदय एक ही बात है, मतलब मन मन बुद्धि हृदय एक ही बात ही बात है। बोले मेरे हृदय ड्राइविंग कर रहा था और मेरे चरण को रूपी रथ को चला रहा था, और यहां आके पार्किंग के वहां रुका ही नहीं गाड़ी, मैं क्या करूं, मैं यहां आ गया, मेरा मन ही नहीं हुआ। मैं देखा सिंह दर्जा के सामने निकला, मेरा मन ही नहीं हुआ वहां खड़ा रहूं, जाऊं जगन्नाथ जी के दर्शन करूं, सीधा आपके पास मन हुआ आ गया, यहां रुका तक नहीं, खींच कर आपके पास आ गया। अब भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने रामानंद राय बात कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले ईसा मत को, ईसा मत को, जगन्नाथ जी के दर्शन पहले करना चाहिए। बोले बोले ये तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता है जिनका दर्शन पहले करना चाहिए, मैं तो वही आ गया वहां क्यों जाऊं। तो फिर बोले नहीं नहीं जाओ, बोलो ठीक है अभी जा रहा हूं, आपका दर्शन हो गया बातचीत, अभी जा रहा हूं। तो गए दर्शन के लिए। तो इसी सिद्धांत में दिखाते हैं कि जो बड़े बड़े भक्त उनका व्यवहार कैसा है, और भक्तों की सेवा करके जो अति असंभव कार्य सब संभव हो जा रहा है, इसके लिए श्लोक चर्चा आया सरहों पंडित के साथ। फिर राजा का जब बातचीत हो रहा है, सरहों पंडित बताते हैं कि काम तो बनने वाला है, क्यों? बोले कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से बात कहे हैं कि मेरे पूजा से भी मेरे भक्त पूजा अधिक है। हाँ, और कृष्ण ये बात कहे कि जो बोलता है कि मैं कृष्ण के सेवक हूं, कृष्ण के भक्त हूं, कृष्ण बोलते हो तुम क्या मेरे भक्त हो यार, मैं तेरे जैसे भक्त को ना चाहता हूं सेवा, ना तेरा योग्यता है, तेरा सेवा करने का ना तो योग्यता है ना मेरे आवश्यकता है, दोनों ओर से रिजेक्टेड, कोई एक ओर से भला काम, यू आर टोटली डिस्क्वालिफाइड एंड आई डोंट वांट। तो कोई बोल देगा मैं कृष्ण के सेवक, बोले बेकार बात है, लेकिन कोई बोले ना मैं कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्त के सेवक, अच्छा मेरे भक्त के सेवक है क्या, तब तो फिर हमारा सतनाता है उसका, कृष्ण उसको स्वीकार करते। जो मेरे भक्तों के दास है उनका साथ मेरे रिलेशन है, जो मेरा दास है उनका साथ नहीं रिलेशन, ये भगवान ने स्वयं कहे। और आगे कहे कि जो मेरे अति प्रिय भक्त होते हैं वो उनके मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ लगा करके मेरे सेवा करते हैं, और मेरे साथ साथ मेरे से भी ज्यादा मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। इसलिए कहा गया कि अगर भगवान को कोई प्रसन्न करना चाहता है तो क्या उपाय है? भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा से भगवत प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, यही तरीका है। अब महाराज प्रताप रुद्र ने रामानंद राय को सेवा कर डाले, अब तो भगवान को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा न चाहते हुए। यही बात को समझाते हुए ये श्लोक में कहते हैं कि महाराज चिंता मत करो प्रताप रुद्र जी, क्योंकि ये शास्त्र की बात है, ये जो आज के श्लोक बोर्ड में लिखा है ये पद्म पुराण के श्लोक है, वो भगवान शंकर और पार्वती की बातचीत है। तो देवी पार्वती पूछ रहे हैं प्रभु जी को, बोले हैं कि ये आप हमेशा पूजा वूजा कर रहे हैं, ये किसके पूजा सबसे अच्छा बताएं हम भी करें। तो भगवान शंकर अपने धर्मपत्नी को ये बता रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम, जितने प्रकार की आराधना पूजा आदि है, ये समस्त प्रकार की आराधना से पूजा से सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? विष्णुर आराधनाम परम, भगवान विष्णु की आराधना सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, जितने बाकी पूजा आराधना है सबसे टॉप मोस्ट, सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। अच्छा ताले विष्णु की पूजा करें। तब पर भगवान शंकर बोले, मैडम और भी एक बात है, बोले ये विष्णु आराधना तो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे भी बढ़कर है, उनसे भी बढ़कर, तो क्यों नहीं बताने? बताता हूं सुनिए। विष्णु आराधन तो सर्वोपरि है, उनसे भी ना तस्मात परतरम, उनसे भी मतलब विष्णु के पूजा आराधना से भी और बढ़ करके श्रेष्ठ पूजा है ना क्या, ना उनके भक्तों की पूजा। तदीय नाम समार्चनम, तदीय मतलब जो भगवान के, भगवान से संबंधित है, जो भगवान के हो गए उनको कहते तदीय। जिसे तुलसी महारानी है, गंगा जी है, और जो भगवान के संबंधित द्रव्य, भगवान के संबंधित वस्तु व्यक्ति सब कुछ, ये सब तदीय कैटागोरी में आएंगे। ये तदीय का पूजा भी भगवान के पूजा से कुछ बढ़कर के है। तस्मात परतरम, उससे भी परतर है, श्रेष्ठतर है भगवान से भी भगवान के भक्तों की पूजा, ये श्रेष्ठ। बोले क्यों? बोले भगवान के इसे गुण ही है, भगवान मानते हैं उसको बड़ा। क्यों? भगवान बोलते मैं जब से, अब कब से तो अनादि, ऐसे कभी भगवान बने ऐसे तो हुआ ही नहीं। हम लोग कोई काम पोस्ट पोजीशन पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाकर के बन पाते हैं, और थोड़े दिन के बाद फिर भी खत्म हो जाता है, पोस्ट चला जाता है। लेकिन ये भगवान के जो पोस्ट है, ये कोई पोस्ट ही नहीं है, ये भगवान ही भगवान है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। कोई प्रयास करके बड़े बहुत ये करके को भगवान बन जाए, असंभव। जब भगवान को जानता है, कभी स्वप्न में नहीं सोच सकता कि भगवान कोई बना जा सकता है, कोई बन सकता है, इम्पॉसिबल। भगवान हमेशा भगवान ही है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। कब से? बोले कब से नहीं, अनादि, अनादिर आदिर गोविंदम। वो सबके आदि, उनके आदि है ही नहीं, उनके आदि स्वयं ही है, वही है भगवान, भगवान ही है, वो भगवान है। और ये भी कहा गया, जितने बाकी सम्मानीय व्यक्ति भगवान वस्तु हैं, सर्वदेव नमस्कारम केशवं प्रतिगच्छति। जितने किसको किसी प्रकार से पंचांग साष्टांग ये हाथ उठा करके जितने भी करो प्रणाम, सारे प्रणाम घूम फिर करके केवल भगवान के पास जाएगा, और किसी के पास है ही नहीं ताकत प्रणाम स्वीकार करने के लिए, गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, सारे उन्हीं के पास जाएगा। तो इसलिए भगवान को पूजा सम्मान प्रणाम आराधना स्वीकार करते करते हद हो गया, सभी लोग उन्हीं को तो करते हैं। भगवान को छोड़ करके अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवगण केवल जब सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, भेंट करेंगे, करेंगे किसी को, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली घूम फिरेगा उन्हीं के पास सब जाएगा, बाकी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे उनके बिना, उनके पास जाना ही पड़ेगा सब। तो इसलिए वो बोले यार बहुत हो गया ये बहुत हो। तो इसलिए भगवान हमेशा चाहते हैं कि बहुत हो गया, मुझे थोड़े कोई गाली गुलस करे, थोड़े के नॉर्मल डीलिंग करे मेरे साथ, लेकिन कौन करे। तो इतने इतने शक्ति भी होना चाहिए ना। तो इसलिए बोले कोई नहीं करता, कम से कम मेरे जो हो गए उनको तो थोड़ा पूजा करे, मैं तो बहुत करता हूं उनको। तो इसलिए भगवान उसी को बड़ा मानते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं। आप लोग एक रहस्य पता है, आप और हम जितने भक्त हैं, ये हेडलाइट लगा रखे ना सब, है ना? नहीं, ये किस लिए लगा रखे हैं? ये क्या है? क्या क्या सिंबल है? वो जानते नहीं, हेडलाइट लगा रखे हैं, सामने कोई ढकते भी नहीं है, बाकी शरीर भले ढक जाए, ये तो बिल्कुल उज्ज्वल तिलकम। ये है क्या? किसका सिंबल है ये? हाँ, प्रभु जी ने बताया कि भगवान के चरण को हम अपने ललाट में धारण करते हैं, भगवत चरण। अच्छा, भगवान तिलक के ना नहीं देखिए, वो क्यों किए? अपने चरण को स्टाम्प लगा रखा, वो क्या लगा रखा? हम भगवान के चरण लगे, भगवान क्या लगा रखे? करेक्ट। आप तिरुपति बालाजी जाकर देखिए, उनके आंख ही दिखाई नहीं पड़ेगा, इतने मोटा तगड़ा तिलक ढंग कर रखे, बिल्कुल हेडलाइट इतने स्पष्ट है, मुख में वही दिखेगा, वो बाकी मुख तो कुछ दिखेगा ही नहीं, इतने बड़ी तिलक। क्यों? कि वही प्रमाण करते हैं मैं मेरे भक्त का सेवक हूं। भागवत में तो स्वयं उद्धव को कह, बोले उद्धव मैं बिजी रहता हूं। बोले आपका तो कोई, आप खुद बोले न मांग कर्माणि लिपन्ति न च कर्म फले स्पृहा, आपको भी फल के कर्म फल में इच्छा ही नहीं है, कर्म आपका कुछ करने के लायक है ही नहीं। बोले ये बात तो सही है, मेरा कोई ड्यूटी है ही नहीं, ना मुझे कोई आवश्यकता है, लेकिन आई एम बिजी, टू मच बिजी। बोले किस कार्य में बिजी हुआ ही? आपको काम ही नहीं, बिजी किस रहते हैं? बोले आपको पता नहीं, और क्या काम कर रहे हो? दौड़ता रहता हूं, फॉलो करता रहता हूं, पीछे पीछे भागता रहता, दौड़ता रहता हूं, इतने बिजी। किसका पीछे? बोले मेरे भक्तों के पीछे, किसीलिए? उनके चरण धूल मिल जाए थोड़ा। ये भगवान आपने श्रीमुख से उद्धव को कहे, बोले मैं हमेशा भागता रहता हूं मेरे भक्तों के पीछे, ताकि थोड़ा धूल तो देगा नहीं मांगने से, तो मांगने से डांटेगा, देगा नहीं, क्यों मेरे पीछे भागे? तो उनको बिना बताए पीछे भी छुप छुप भागता, थोड़ा धूल उड़ करके मेरे ऊपर आ जाए, हमारा काम बन जाए। भक्त पद को इतने मोटा स्टाम्प लगा करके हमेशा हेडलाइट रखा रहे हैं भगवान। देखो मैं भी तिलक धारण किया हूं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रमाण है कि भगवान के स्वभाव क्या है। बिल्कुल कहीं भी देखो भगवान को, भगवान विष्णु का स्पष्ट उज्जवल तिलकम, बिल्कुल तिलक करेंगे, और तिलक है क्या? वही है, भक्त पद को स्वयं श्री ललाट में धारण करते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि मेरे से मेरा भक्त बड़ा है। भक्त कभी नहीं मानेगा मैं बड़ा हूं, लेकिन तू भले मान न मान, लेकिन मैं तो मेरे ओर से सर्टिफाई करता हूं उसको, इसलिए ललाट में ढंग करके रखा हूं भक्त चरण को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए भगवत स्वभाव को हम आकलन कर सकते हैं कि भक्तों का पोजीशन कितने बड़ी है। जिनको चरण चिन्ह को स्टाम्प करके भगवान अपने फोरहेड में लगाते हैं, जो जस्ट इमेजिन क्या स्थिति है। लेकिन गड़बड़ी से ये मत सोचना कि आप और हम ही पोस्ट में आ गए करके ये कंठी चोटी तिलक लगा हम भी भगत हो गए, ये यही मिस्टेक है, हम सोच लेते हैं हम भी हो गए करके, ना ना ना, ऐसा मत सोचे। यही सोच करके हम आउट हो जाते हैं, ये हम भी बन गए, नहीं। भक्तों के लक्षण अद्भुत होता है, भगवान के गुण तो है ही है अद्भुत, और इसीलिए भगवान भक्तों के सामने हार ही जाते हैं, क्योंकि भक्तों के गुण भी भगवान के गुण से कुछ मात मार के ऊपर उठ जाता है, कुछ ऊपर, और इसलिए भगवान बोलते हैं कि चलो और मैं क्या कर सकता हूं। भक्तों की बात उन्हें रखना ही पड़ता है। अगर भक्तों और भगवान का कभी कंटेस्ट होता है तो आप जानते हैं ये 100% श्योर हो कौन हारेगा कौन जीतेगा। कभी और डिक्लेयर कर दिए कि अहं भक्त पराधीन, बोले मैं तो हार जाता हूं पराधीन है और क्या है, वो मान लो और क्या, मैं हमेशा हारूंगा ही, उनके सामने जीत ही जीतने का सवाल ही नहीं होता। भक्त आ गया तो भगवान को हार मानना ही पड़ेगा, यद्यपि समस्त शास्त्र कहते हैं भगवान अजीत है, उनको जीता नहीं जा सकता, अजेय है, लेकिन भगवान कहते वो बात सही है, लेकिन मेरे भक्त के सामने अब मुझे तो हारना पड़ता है, मुझे हारना ही पड़ेगा, वो हारता हूं, हारता हूं। वही भक्त और भगवान में अनादि काल से यही कंटेस्ट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। भक्त आपने जीवन प्राण बुद्धि इंद्रिया मन सब लगा करके भगवान के गुणगान कर रहा है, भगवान का आराधना कर रहा है, भगवान की श्रेष्ठता बखान कर रहा है, उन्हीं को जनान स्तुति कर रहा है, उनको बड़ा मान रहा है, पूरी ताकत लगा करके उनको कर रहा है, भगवान भी उनसे कुछ ज्यादा ताकत लगा कर उनके गुणगान कर रहे हैं, खूब कंटेस्ट दोनों का लग रहा है। भगवान भक्तों की पूजा कर रहे हैं और भक्त भगवान की पूजा, बस यही दोनों का खेल है दुनिया, बाकी कुछ नहीं है। सारे आध्यात्मिक लोक में और जहां भक्ति है, भक्त है, भगवान है, उनमें एक ही काम चल रहा है, एक ही कंटेस्ट, बस वो उनके पीछे, वो उनके पीछे, दोनों दोनों के पीछे पड़े। दोनों दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो पड़े हैं कि मैं आपको बड़ा करके छोड़ा, बोलते तुम कैसे बड़ा कर लेगा, तुम बड़ा ही हो। यही चल रहा है। और सारे शास्त्र बीच में कभी उनको बोलते हैं कभी उनको बोलते हैं, लेकिन कोई की डिसाइड नहीं कर पाता है कौन। यही है नित्य काल से भक्त और भगवान का यही भावना है, इस प्रकार चले वो इनको उनको करते। तो इसलिए ये आप मन में सोच लीजिए, हम कभी भक्त हो जाएं तो कितने बड़ी पोस्ट है, जिनके पीछे अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ पीछे पड़ते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी है क्या? ना, ना। जिनको भगवान कहते अहं भक्त पराधीनो। लेकिन ये बात मैं आपको दबा करके कहता हूं, आप जिस लाइन पकड़ लिए ना, अभी भक्त भले बने नहीं लेकिन भक्त बनने के लिए भक्ति का अभ्यास तो शुरू कर दिया ना, मतलब रास्ता राह तो पकड़ लिया ना। इस राह को अगर छोड़ेंगे नहीं, भले 2-5 हजार करोड़ जन्म लग जाए लेकिन पहुंचना ही है, पहुंचना ही है, ये गारंटी है। उसमें आंख बंद करके चले, पैर में फिसलते हुए पानी डाल करके चले, जूता पहने, कुछ भी करे, हजारों गड़बड़ी करे, अगर रास्ता ना छोड़े तो पहुंचना ही है, पहुंचना ही है। और अगर थोड़ा कस करके रास्ता पकड़े, भगवान तो ऐलान किए खोल करके, अपीचत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। बोले कौन कहेगा, मैं मेरा मत में कहता हूं, उनको साधु बोलना ही पड़ेगा। दिस इज माई डिसीजन, माई स्टेटमेंट। अरे किसको बोलते हैं साधु? ओ बदमाश है, सारे गंदा काम खराब काम किया है, दुराचारी है। दुराचारी समझते ना, दु मतलब खराब आचरण, जो खराब आचरण वाला लोग है दुराचारी है। भगवान बोलते हरे दुराचारी सुदुराचारी। सुदुराचारी मतलब जो नंबर 1 कैटेगरी के खतरनाक आदमी दुराचारी है। भगवान का दुराचारी नहीं बोले, बोले अपिचेत सुदुराचारी, अपनी मतलब एक बार हाई ग्रेड के दुराचारी व्यक्ति भी अगर कंडीशन केवल एक ही है, क्या मेरे भजन करेगा, लेकिन कैसा आपका भजन करेगा? बोले बाकी सबका भजन छोड़ करके मेरा भजन। अनन्य मतलब न अन्य, और अन्य दूसरे किसी का नहीं। हम लोग तो करते हैं, उनको भी करते हैं, उनको भी करते हैं, उनको भी करते हैं, प्लस उनको भी करते हैं। बोलते हैं ना, केवल मुझे, केवल मेरे लिए। अन्य कहीं भी जाएगा उनको प्रार्थना करेगा मेरे लिए ही करेगा, किसी को पूजा करेगा, प्रणाम ठोकेगा, वर मांगेगा मेरे लिए ही करेगा, जाएगा सब जगह में, लेकिन टारगेट एक ही है। सभी देवी देव मनुष्य सभी के पास जाएगा, सबको हाथ जोड़ेगा, सम्मान करेगा, लेकिन केवल एक ही इच्छा, एक ही इच्छा प्रकट करेगा, जैसे भी कैसे मेरे मन ठाकुर जी में लग जाए, आप कृपा करो, कुछ मदद करो, सभी को ही मदद मांगेगा किसी प्रकार से, ठाकुर जी मन लग जाए। यीशु कहते हैं अनन्य भाव। इस प्रकार जो अनन्य भाव से भगवान के भक्ति में लग जाता है, अभी भक्ति करके सिद्धि करने के भगवान नहीं बोले, बोले भजते मतलब भजन करना शुरू कर दिया अन्य भाव से, तो उनको साधु मानना पड़ेगा। दिस इज माई डिसीशन, भगवान गारंटी करके बोलते हैं। आप देखेंगे जब भगवान ने श्लोक बोले भगवत गीता में, साधु शब्द बहुत बड़ी बात है, साधु का व्याख्या बहुत बड़ी है, साधु शब्द का डेफिनेशन। अब इस श्लोक के तुरंत बाद भगवान ने एक श्लोक कहेंगे गीता में शायद, ये क्या कहेंगे, क्या श्लोक है उसके तुरंत बाद, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। पहला लाइन क्या है, कौनते यह प्रतिजानी ही। अब भगवान ने बोलते हैं इसके तुरंत बाद, क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। धर्मात्मा समझ रहे, धर्म आचरण करने वाली आत्मा, धर्मात्मा। लेकिन अभी बहुत बड़े जो समझ हम लोग तो नहीं समझते, समझदारी है, बड़े कंफ्यूज में आ जाते हैं। भगवान बोले दुराचारी और साधु बन जाए, साधु के बाद में बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। साधु बनने के बाद धर्मात्मा बनेगा? पहले पीएचडी किया, पीजी किया, फिर भी हाई स्कूल पास करेगा? ये धर्मात्मा होता है हाई स्कूल एचएससी एग्जाम, और वो होता है डिलीट पीएचडी के बाद जो कहते हैं ये डिलीट पोस्ट डॉक करने के बाद हाई स्कूल एग्जाम देने के लिए आएगा क्या कोई? साधु बन जाएगा उसके बाद में धर्मात्मा बनेगा जल्दी हो, ये कैसे हो सकता है? आप अभी बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप नहीं समझ रहे साधु का क्या मतलब है, धर्मात्मा का क्या मतलब है। साधु कहने से वो व्यक्ति है जिनके पीछे पीछे भगवान भागते रहते हैं हरगिज। धर्मात्मा भी धर्म आचरण करता, भक्ति अभी किया ही नहीं, थोड़ा बहुत धर्म कर्म करता रहता है, अभी अभी तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया। और भगवान कहते हैं ओ दुराचारी सुदुराचारी साधु बन गया, और तुरंत बोलते हैं वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो कौन था, किसको भगवान बोलते हैं जल्दी से धर्मात्मा बन जाएगा, किसको कहते हैं? उन वही दुराचारी जो साधु बन गया उसको? नहीं नहीं नहीं, ये रहस्य देवता तक नहीं समझ पाए, देवराज इंद्र तक बोले ठाकुर जी का क्या कहना है, ये साधु तो बहुत बड़ी पोस्ट है और साधु कहकर के बाद बोलते हैं कुछ जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, धर्मात्मा के डिग्रेड हो जाएगा उसका, वो समझ में नहीं आ रहा था। लंबी समय तक बड़ी बड़ी देवता देवर्षि ब्रह्मर्षिगण बैठकर कुछ चर्चा करते भगवान क्या कहना चाहते हैं, साधु के बाद कोई धर्मात्मा कैसे बने? धर्मात्मा बनेगा कई सैकड़ों जन्म धर्म धर्म पालन करते करते भगवान तो सर्व धर्म छोड़ो, ये तो सब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के, अब साधु कितने हाई कैटेगोरी के है, वो साधु बनने के बाद जल्दी धर्मात्मा कैसे, किसको कहते हैं? वो समझ नहीं आ रहा था, हम लोग क्या समझेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे कहावत है, वो सब मिल करके जब पुरी में श्री भक्ति विनोद ठाकुर थे, श्री जगन्नाथ मंदिर के परिचालक वहां मैजिस्ट्रेट थे, तभी एक बार एकांत में सारे देवर्षि देव मंडली आए भक्ति विनोद ठाकुर के पास मिलने के लिए। बोले हमारे से नहीं बनता, हम जानते हैं आप ही करो, क्योंकि वो डिवोटी है आप बता सकते हैं भगवान के मन के भाव, हम तो अंकलन नहीं कर पाते हैं। ये स्टेटमेंट कैसे भगवान ने इसे दे दिए, पहले पीएचडी लीड करके बाद में हाईस्कूल एग्जाम देगा, पहले साधु बनने के बाद फिर धर्मात्मा बनेगा जल्दी, ये किसको धर्मात्मा बनने के लिए कहा जाता है? तो ठाकुर भक्ति विनोद ने सभी के सामने सभी का संशय दूर किए, बोले ठाकुर जी वो जो दुराचारी साधु बन गया उसको फिर धर्मात्मा बनने के लिए नहीं कहते ना, तो बन ही नहीं सकता ना, उनके लिए नहीं, फिर किसके लिए? बोले भगवान उसके लिए जल्दी धर्मात्मा बन जा कहते हैं जो व्यक्ति इसको मानेगा, इस बात को मान जाएगा कि महान से महान खतरनाक दुराचारी व्यक्ति भी अगर अनन्य भक्ति करे तो साधु बन जाएगा। इस स्टेटमेंट को जो मानेगा, थर्ड क्लास कोई साधारण व्यक्ति जो इसको स्वीकार कर लेगा, अच्छा हाँ हो सकता है, जो ऐसा मान जाएगा वही जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। समझ में आया? जो इस बात को विश्वास करेगा उनको कुछ नहीं धर्माचरण करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, केवल इस बात को विश्वास करते ही। कौन सा बात को विश्वास करते ही? कि महान से महान दुराचारी भक्ति अगर एकांत भक्ति कृष्ण के करे निश्चित रूप से साधु बन जाएगा, इसी बात को कोई विश्वास कर ले तो उनको बिना कुछ दान दक्षिणा धर्म पूजा किए इमीडिएट धर्मात्मा बन जाए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा जो जस्ट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, जस्ट बिलीव करेगा स्टेटमेंट, वही धर्मात्मा बन जाएगा। साधु धर्मात्मा कैसे बनेगा, अंदाज लगा सकते हैं भगवान कितनी बड़ी पोजिशन देते हैं साधु भक्त बन जाना। और ये भी कहते हैं तो हम लोग तो सुदुराचारी पोस्ट में भी तो आए नहीं, दुराचारी हैं अवश्य मानते हैं, कोई कोई दुराचारी से और थोड़ा हाईग्रेड हो चुके हैं, लेकिन सुदुराचारी कोटि में अभी तक आए नहीं, अभी हम कमी है, और दो चार कलयुग होने के बाद शायद सुदुराचारी हो सके
अभी तो दुराचारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई निराशा होने की बात ही नहीं, कोई निराशा का बात नहीं। भगवान जो इतनी बड़ी बात कह दी, सुदुराचारी भी साधु बन सकता है अगर अनन्य भजन करे। अब अनन्य भजन करे मतलब कर कर के सिद्धि भजन को नहीं, करे शुरू कर दे, मन में ये संकल्प ले ले, आज से प्रभु आप में रहे, मैं आपका हूं, और दुनिया में जितने जो कुछ है एजेंसी सभी केवल आप में मन को लगाने के लिए मैं यूज करूंगा, आपसे मदद मांगूंगा, बस केवल हम दोनों का नाता है, बस इसी बात में जो कोई उतर जाए ही साधु, वो तो आप इसी क्षण भी कर सकते हैं, इसी क्षण भी कर सकते हैं। और बड़ी मजे की बात है, अन्य युग के तो बात है डिसीजन लेने से वो कर थोड़ी पाएंगे भाई, अब कितने फंस जाते हैं, बोले फंसने का तो हमारे दो मिनट मिनट में फंस जाते हैं, हम लोग का क्या है? लेकिन भगवान इस कलि युग में ये सुविधा दे रखे हैं, ये डिस्काउंट दे रखे हैं कि मन में सोच तो लो, मानसिक संकल्प का पूरा फल दूंगा, अब किया नहीं कुछ, केवल मन में डिसाइड कर लिया तुझे मार्क मिल जाएगा, पास कर दूंगा तुझे, मन में सोचने से पास हो गया, अब किया कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे युग में मन में सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा भैया, करोगे तब मिलेगा। लेकिन इस कलि युग में भगवान ने ये विशेषता दिए हैं, हम मन में तो सोचो लेकिन गड़बड़ी हमारे मन में सोचते भी नहीं हम लोग, मन में अगर शुभ विचार शुभ संकल्प मन में सोच ले तभी भी काम बन जाए, लेकिन हम इतने हुड़बक के मन में सोचते भी नहीं तो स्थिति को। इसलिए भगवान गीता में गारंटी देते, मन मना भव मया सक्त मना पार्थ, मन मुझे लगाओ यार, मन में कोई खर्चा थोड़ी लगता, कौन सा खर्चा वर्चा करते मन में इस पूजा आराधना करने के लिए, आराधना नाम बोलते हैं आराधना करने के लिए, दुनिया प्रकार की अब से डुप्लीकेट माल है, ये सब सामग्री कहां लाऊं, पुजारी लाऊं, तंत्र में कुछ नहीं करना है, मन से करो, कोई सामग्री मार्केट जाना नहीं, एक नया पैसा खर्चना नहीं, घर बैठे बैठे मन से खूब ठाट बाट में करो और क्या। और मानसिक पूजा का सर्वश्रेष्ठ महत्व श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा दिया हम लोग वैराग्यों को, भालना खाइब भालना पारिब, ग्राम्य कथा ना कहिब ग्राम्य कथा ना सुनिब, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिब। ये नहीं कहे कि ओ पारफन लिया ले करके साफ धमधाम, बोले ना ना ना, तो क्या मन में करो राधा कृष्ण की सेवा, मन से करो, मन में करना पड़ेगा, हम सब वस्तु से कर रहे हैं, मन तो और कहीं रहता है, वस्तु वस्तु कुछ नहीं, केवल मन से करो, दैट इज एक्सेप्टेड। वही है इतनी बड़ी बात, भगवान केवल कहते नहीं, करते करते नहीं दिखाते, इसीलिए तिलक धारण किए हैं। नित्य काल से आपने परिचय देते हुए हेडलाइट बिल्कुल फोरहेड में लगा कर देंगे, देखो मैं जो कथनी और करनी एक ही है, यही हूं, अभी आपके ऊपर है आप भक्त बनना चाहते या नहीं, बल इज इन आवर कोर्ट, उनके तरफ से तो बिल्कुल खुले आम डिक्लारेशन, होर्डिंग लगा कर दिखा रहे हैं हमको, ये तिलक तो ही है और क्या, एडवर्टाइज कर रहे हैं हमारा ऊपर। अब इस प्रसंग के आगे महाप्रभु अभी पुरी में रामानंद से मिल गए, अभी स्नान यात्रा होगा, अभी आगे वर्णन सुनेंगे, स्नान यात्रा के बाद भगवान के अनसर होगा, अनवसर, फिर रथ यात्रा आदि होगा, लेकिन अभी अनवसर चल ही रहा है, स्नान यात्रा हो चुका है जानते हैं, लेकिन मैं अभी देखता हूं जगन्नाथ जी सामने बैठे हुए बिल्कुल मिडिल में, पता नहीं यहाँ के भक्तगण के क्या मनोभाव है, जगन्नाथ को रखेंगे भी अल्टर पे और उनकी बात ही नहीं मानेंगे, अरे भाई ये नेचुरल बात है भाई, जिस ठाकुर को रखते हैं उनका उनके सेवा पूजा तो करना होगा ना, और गौर नित्या अल्टर में रखे तो गौर पूर्णिमा नित्यानंद त्रयोदशी तो करना ही पड़ेगा, अब भगवान राम रखे रामनवमी के दिन उनका अभिषेक करना पड़ेगा, कृष्ण रखे तो जन्माष्टमी करना पड़ेगा, और जगन्नाथ क्यों रखे जब नहीं करेंगे, और जब करना ही नहीं तो अल्टर में रखो ही मत, बिल्कुल बीच में सेंटर पर रखेंगे वो करने नहीं, श्री जगन्नाथ के जगन्नाथत्व तो इसमें प्रमाणित होता है जब अनवसर होता है। आप जानते नहीं रहस्य, जगन्नाथ जगन्नाथ नाम सार्थक होता है जब वो बीमार पड़ते हैं, नहीं तो जगन्नाथ बन नहीं सकते, उनका नाम जगन्नाथ हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने खुद आदेश दिए इंद्रदिम्न को, इंद्रदिम्न जब मुझे इस पोस्ट में रखा तो ये मेरा आदेश है, ये आषाढ़ ज्येष्ठ पूर्णिमा मेरा जन्मतिथि है, उस दिन मेरा महास्नान कराना और उसके बाद ये विधि सब में करना और इसमें ये भी यही बताए, तो ये करना चाहिए। अब बड़े और छोटे करना चाहिए। हमारे तो यहां जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं उड़ीसा आगरा में जो जानते हैं कल्चर, उनका किसी का दुकान में घर में छोटे से फोटो जगन्नाथ जी के टांगे होंगे ना, इस अनवसर समय उसको उल्टा देते हैं, कुछ कपड़ा ढंग देते हैं कि स्वयं जगन्नाथ जब ये ज्वर लीला कर रहे हैं सिकलिप में है तो हम उनको क्यों रखें सामने और सेंटर में रखें, है ना? नहीं, ये तो अविधि है। तो वहां के जो अधिकारी हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है जगन्नाथ को सेंटर में रख करके, भाई यू आर नॉट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन, तो क्यों रखे क्यों है? ऑलरेडी इतने सारे राधिका रमन है, गोरनीता है, कृष्ण बलराम है, बहुत है, अगर उनको सेवा नहीं करना चाहते मत रखो, रख करके सेंटर में फिर भाई यू आर डिसोबिंग हिम। उनसे कौन सा बड़ी बात है भाई, पर्दा उठांग तो बस, ये उसका पीछे बहुत बड़ी रहस्य है। आप ना कोई सुनना भी चाहते ना करना भी चाहते, है ना? नहीं, उसका पीछे जगन्नाथ जी का क्या मूड है उसका जानना जानेंगे तो पता चलेगा, नहीं कितने आवश्यकता है, है ना? नहीं, तो अगर कोई जगन्नाथ जी को रखना चाहते हैं तो मिनिमम इतना तो करना होगा, जिसमें उनको नाम जगन्नाथ प्रमाणित होता है इस काम भी तो करना होगा। कोई भारी तो करना नहीं है, उनको यहां से उठा के बेड में सुला दो, नहीं तो दर्शन नहीं देते। मैं इसमें आएगा इस चैप्टर में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए, दुखी होकर के अलारनाथ चले गए, इसी चैप्टर में जो पढ़ेंगे अभी आगे चल कर आए। और हम कह रहे हम तो देख रहे सेंटर में बैठा रखे चौबीस घंटा, ये क्या है? अब जिस प्रभु को हम सेवा करेंगे उस प्रभु के अनुसार तो करना पड़ेगा ना। सेवा का मतलब क्या है? अपना मर्जी थोड़ी करेंगे, मुझे गला खराब है मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए, आप ठंडी लस्सी ला कर देंगे, सेवा करना चाहता हूं लीजिए लीजिए, अरे मेरे हाल खराब तो सेवा करता ही। सेवा सेव्य के अनुसार होना चाहिए ना कि अपने मर्जी होता है, हम जो चाहें ऐसे थोड़ी होगा, उन्हीं के रिक्वायरमेंट वो क्या चाहते हैं क्या रीति नीति उसके अनुसार होना चाहिए, नहीं तो सेवा के मतलब ही क्या रहता। हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की।